विश्व दर्पण।
दोस्तों, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के सामने मौजूद चुनौतियों के विषय पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। इमरान खान की विरोधी पार्टियों की ओर से पेश किए गए उम्मीदवार शहबाज शरीफ का देश का प्रधानमंत्री बन जाने और तहरीक इंसाफ पार्टी के सारे सांसदों के त्यागपत्र दिए जाने के बाद पाकिस्तान में जारी राजनीतिक हलचल अब नए चरण में दाखिल हो गई है। मियां शहबाज शरीफ अदालती आदेश द्वारा संसद में पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने पर प्रतिबद्धता और इस प्रस्ताव के सफल होने के बाद नए प्रधानमंत्री के रूप में 110 के मुकाबले में 174 वोटों से देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए और उन्होंने शपथ भी उठा लिया। प्राचीन परंपरा के विपरीत पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बजाय चेयरमैन सीनेट ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जबकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल नहीं हुए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा दोनों ने वजह बीमारी बताई। एक ने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने और दूसरे ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से बचने की कोशिश की और ये भी अपनी एक जगह राज है। इन सब बातों को छोड़कर पाकिस्तान के राजनीतिक और मीडिया हलकों का मानना है कि अलग अलग नज़रिए और दृष्टिकोण वाली पार्टी के प्रमुख के रूप में नए प्रधानमंत्री को आंतरिक और विदेशी मामलों तथा मंत्रिमंडल के गठन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पार्टी के संसद में संख्या के लिहाज से इतना बहुमत भी हासिल नहीं है जितना पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी तहरीक इंसाफ को हासिल थी। दूसरे के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का अपने घटकों का साथ छोड़ जाने और पार्टी के अंदर बगावत के बाद यह दिन देखने को मिला है और सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही ख़त्म हो गई। अलबत्ता ये सवाल भी सामने आ रहे हैं कि किन कारणों से तहरीक इंसाफ के घटक दलों ने एकदम अपना समर्थन वापस ले लिया और विपक्ष के साथ जा मिले और खुद पूर्व पार्टी के दो दर्जन से अधिक सांसद भी विपक्ष के कैंप में जाकर बैठ गए। जैसा कि इमरान खान कई बार अपने बयानों और भाषणों में कह चुके हैं कि वो विपक्ष की मदद से अमरीकी साजिश की भेंट चढ़े हैं और उन्होंने वर्तमान सरकार को इम्पोर्टेड सरकार करार देते हुए उसके साथ किसी भी स्तर पर सहयोग न करने का फैसला किया है। इस रणनीति पर अमल करते हुए तहरीक इंसाफ के सारे सांसदों ने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए और जनशक्ति के लिए सड़कों पर उतरने का भी ऐलान कर दिया, जिसका लक्ष्य संबंधित संस्थाओं पर देश में तुरंत चुनाव कराने के लिए दबाव डालना है।
विश्व दर्पण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
तहरीक इंसाफ के सारे सांसदों के एक साथ त्यागपत्र के बाद, जिनकी संख्या 100 या उससे भी ज़्यादा बताई जाती है, संसद के लिए अपनी सामान्य कार्रवाई का जारी रखना मुश्किल नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर इस लिहाज से भी कि सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में एक केस की सुनवाई भी चल रही है। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है कि मुस्लिम लीग एन और अन्य घटक दलों का हनीमून जल्द ख़त्म हो जाएगा या अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव तक जारी रहेगा। जब मैंने पाकिस्तान के टीकाकार राशिद अहद से पूछा कि पाकिस्तानी जनता की समस्याएं जो हैं महंगाई, रुपए की कदर में कमी और बेरोज़गारी, इन्हीं नारों के साथ इमरान खान सत्ता में आए थे, 3 साल के बाद न केवल महंगाई कम नहीं हुई बल्कि निरंतर बढ़ती गई, रुपए की कदर लगातार घटती रही, बेरोज़गारी भी بڑھتی رہی، عمران خان صاحب اپنی ناکامی کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ این پر ڈالتے رہے، اور ان کا کہنا تھا کہ پچھلی سرکاروں نے اتنی سمسیائیں چھوڑی کہ سرکار کا سارا دھیان اسی طرف رہا اور جن سمسیاؤں پر کوئی دھیان نہیں دے سکی۔ اب شہباز شریف بھی انہیں نعروں کے ساتھ ستہ میں آئے ہیں، یہ کون سا بہانہ پیش کریں گے جنتا کے سامنے؟ تو ان کا کہنا تھا
ایک بہانہ تو پیش ہی کر چکے ہو جو کہ شہباز یعنی نواز شریف کی حکومت نے اقتصادی طور سے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کو سنبھالنا ظاہر ہے کہ کمی بات انہوں نے کہہ دیا، اور یہی بہانہ تواتر کے ساتھ یکے بعد دیگرے یعنی آنے والی یعنی وہ حکومت جس کو برخاست کیا جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ جو حکومت لائی جاتی ہے تو لائی جانے والی حکومت کو یہ موقع ملتا ہے یہی کہنے کا، اور تو کچھ ہے نہیں۔ اس کا مطلب اس اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے دور میں مہنگائی بڑھے، ہمارے دور میں مسائل اور پیچیدہ ہوں تو اس کو ہمارے اوپر مت ڈالے، عوام ہمارے اوپر نہ ڈالے، اس لیے کہ پچھلی حکومت نے اس پیچیدگی کو اتنا یہ کر دیا کہ ہمارے لیے اس کے لیے اصلاح نامشکل ہے، اصلاح اس کی بہت مشکل ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اقتصادی صورتحال عمران خان نے خراب کر دی، اس کا مطلب یہ کہ دوسری بات کہ ظاہر ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے ایک پاکستان میں حکومتوں کو یعنی یہ بات تو اظہر میں نشنس پہلے سے بھی تھی اور مزید واضح ہو گئی کہ بھائی امریکہ نے صاف مداخلت کر کے جس کو چاہا تھا، تو جب کسی یا جب کوئی حکمراں اپنی بنیاد پر خود کھڑا نہیں ہے تو وہ بالآخر یعنی سامراجی طاقت اس میں بالخصوص امریکہ سے ہٹ کر کے کوئی پالیسی کیوں بنائے گا عوام کی؟ نہیں بنا سکے گا، اس لیے کہ امریکہ کے اثر و نفوذ پاکستان میں بہت گہرے ہیں، اور اب اس عمران خان کو یعنی کہ نو کانفیڈنس موشن کے ہٹانے کے بعد تو یہ بات سبھی ریٹائرڈ فوجی افسر بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے جتنے بھی پولیٹیشینس ہیں بہت اس میں اکثریت یہ بات کر رہی ہے۔ تو یہ جو پاکستان کے ساتھ جو یہ ہوا ہے نا کہ مطلب بالکل ان کی یتیمی کھل کر کے آ گئی ہے انٹرنیشنل برادری کے سامنے کہ یہ خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ خود اپنی ریاست نہیں چلا سکتے ہیں۔
پاکستانی ٹیکہ کار مبشر میر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ادھکتر شہروں میں عمران خان کے سمرتھن میں پردرشن ہوئے، جبکہ ودیشوں میں بھی پردرشن ہوئے۔ یہ پردرشن ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان کا جناندھار ہے اور ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔
پاکستان کے تقریباً 50 شہروں میں کم و بیش اور بعض پھر چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی خبریں آئیں کہ اور اربن سوسائٹی میں تو ایک بھرپور طریقے سے احتجاج ہوا، اور رورل سوسائٹی جو ہے جو گاؤں کی یا قصبات کی زندگی ہے وہاں پہ بھی لوگوں نے جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیا۔ تو ایسا جو ایک اتنا بڑے لیول پہ ہوا، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں نے کئی ملکوں میں احتجاج کیا، تو یہ کیفیت عمران خان کے لیے بڑی تقویت کا باعث ہے کہ ان کا جو نیا بیانیہ ہے آزاد خارجہ پالیسی کا، بیرونی مداخلت سے رجیم کو تبدیل کرنے کا اور امریکہ مخالف ایک پبلک کو ایک سلوگن دینے کا، وہ ایٹ لارج پبلک نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اس کو جس انداز سے ہم نے کراچی میں بھی خاص طور پہ لاہور میں جو ابزرو ہوا، اسلام آباد میں ابزرو ہوا کہ وہ صرف کوئی ینگسٹر نوجوان نہیں آئے بلکہ اس میں بہت سی فیملیز آئیں، خواتین کی بڑی تعداد بھی ان پروٹیسٹ میں شریک ہوئی اور پرامن احتجاج تھا۔ لہٰذا عمران خان کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے یہ بڑی تقویت کا باعث بن گئی کہ اگر اتنا بڑا رسپانس ابھی بھی ان کے لیے موجود ہے، اور جو ان کی مقبولیت میں کمی ہوئی تھی اس کے ساتھ انہیں واپس بھی اتنے لوگ مل گئے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے تحریک چلانا زیادہ انہیں بہتر نظر آ رہا ہے۔
पाकिस्तान की महिला टीकाकार फौजिया शाहिद से जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान में 8 मार्च से चलने वाली आंधी आखिरकार किसी परिणाम तक पहुंची और उसने इमरान खान की सत्ता उखाड़ कर फेंक दी, अब पाकिस्तान के भविष्य को कैसा देख रही हैं, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो हुआ उसमें आंतरिक समस्याओं के साथ साथ विदेशी हस्तक्षेप भी है, आप इस मामले को किस तरह देख रही हैं, तो उनका कहना था।
देखिए, जहाँ तक पहले अगर इस पोर्शन को लेते हैं बैरूनी मदाखलत का, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर बैरूनी मदाखलत हुई है तो वो किसी रुके के थ्रू या किसी तरह इस तरह बजाय धमकी देते हुए नहीं हुई, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह भी मुख्तलिफ औकात में उसको इस तरह प्रेशराइज करते हुए मदाखलत की है। अगर हम 1979 में देखते हैं जो अफगानिस्तान के वहाँ जहाद के नाम पे जाहिर है कि एक वो बराह रास्त मदाखलत थी और मर्जी की हुकूमत जो है वो लाई गई, उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करके जिस तरह ज़ियाउलहक को लाया गया और अपनी मर्जी से चलाया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब 9/11 की सूरत हाल डेवलप हुई तो उससे पहले नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी उसको ख़त्म करते हुए एक वाज़े तौर पे जनरल मुशर्रफ को जिस तरह लाया गया था और जिस तरह इस्तेमाल किया गया था, तो ये अमेरिका की जानिब से ये मदाखलत तो जरूर रही है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई वो खत लिख के या कुछ होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको तस्लीम करने से नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बहुत अर्सा जो है वो डिप्लोमेटिक उसमें भी मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ, एज एडिटर मैंने सोवियत इंफॉर्मेशन में भी काम किया था, तो मैं ये समझती हूँ कि डिप्लोमेट्स हों या इसके साथ साथ हम ये देखें कि वजारत खारजा से रिलेटेड दूसरे किसी भी मुल्क की बात हो, तो वो कभी भी तहरीरी तौर पे थ्रेट नहीं देते। हाँ, ये जरूर करते हैं मुख्तलिफ औकात में, हमने ये देखा कि पाकिस्तान के हवाले से हो या दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हवाले से, मुख्तलिफ औकात में वो अपनी मर्जी की कुछ मनमानियाँ करते हैं, लेकिन मैं इस बयानिए को ज्यादा तस्लीम नहीं करती और मैं ये समझती हूँ कि ये अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।